ॐ अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकात्तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सभी प्रार्थना में भाग ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जुगल प्यारी थाव झूलेलाल मंदिर इंदौर में आज सायंकाल के सत्संग में आप सबका स्वागत है और आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं साई ठकल मोहनलाल साहब जी का जिन्होंने फोन करके यहाँ सेवा का अवसर दिया। और आप सुबह भी सत्संग में पधारे थे और शाम को भी आए हैं। सुबह सत्संग में विषय था सुख का साधन और चर्चा चल रही थी कि सदा सुख चाहिए, हमेशा के लिए सुख चाहिए, निरंतर सुख चाहिए। तो वो सुख केवल भगवान के साथ रिश्ता जोड़ने से, संबंध स्थापित करने से मुमकिन है या संभव है, क्योंकि सुख का सागर वो है, सुख का स्रोत वो है, शांत वो है, सुखमय वो है, आनंदमय वो है। उससे संबंध स्थापित करें, उससे रिश्ता जोड़ें तो हम भी सुखी हो जाएंगे। ये दोनों रिश्ता जोड़ने का काम कौन करता है? जीव का भगवान के साथ रिश्ता कौन जोड़ता है? ये काम साधु संत सतगुरुओं का होता है। इसलिए साधु गुरु संत के पास जाते हैं कि हमारा भगवान से संबंध स्थापित कराए। इसलिए हमारे को साधु के संग की, गुरु की शिक्षा और गुरु के शरणागति, गुरु का आश्रय लेने की आवश्यकता या जरूरत है। माया मुग्ध जीवेर जो संसार में हम आए हैं, ये संसार किसका है? बोला माया का। जैसे शादी की हुई लड़की अपने माता पिता के घर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? बाबा शादी कैल छोकरी पांजे माइटन वने उनके चाचे। वो हिंदी में मैका बोलते हैं और सिंधी में पेका बोलते हैं। पेका का मतलब पिता का घर, पियो जो घर, और मैका का मतलब माता का घर, माँ का घर। तो जबान में हम पिता का घर मानते हैं तो उसको पेका कहते हैं, और माता का घर मानते हैं तो मैका कहते हैं। तो जिस लड़की की शादी हो गई है वो कितने दिन अपने माता पिता के घर में सुखी रहेगी? भाई मायके में कितना दिन सुखी रह सकती? नहीं रह सकती। उधर जाती है तो आजाद हो जाती है, अपने मन से चल सकती है। ससुराल में होती है, पति के घर में होती है तो नेम में रहना पड़ता है, लेकिन अपने माँ बाप के घर में जाती है तो सर के ऊपर कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे मन में आया वैसे खा ले, जब चाहे तैसे कर ले, लेकिन वहां सुखी नहीं रह सकती। तो ये संसार हम सबका मायका है। ये दुनिया जो है लड़कियों का भी लड़कों का, हमका हमारा मायका है, हमारा अपना घर नहीं है। यहां हम अपनी मनमानी सोचते, कुछ कुछ लोगों को आप कहो कि भाई आज सत्संग आओ, बोल हमारी जैसे मर्जी होगी वैसे करेंगे, हम क्यों सत्संग में आए? तो उससे पूछे तुम्हारी मर्जी चलती है क्या? तुम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो? अगर तुम्हारी मर्जी चलती है तो तुम्हारे बालों को बोलो कि सफेद नहीं हो, काले रहे। तुम्हारी मर्जी तो नहीं चलती है क्या? तुम्हारी मर्जी चलती है कि मैं बूढ़ा नहीं हूं? चलती है? नहीं चलती है। तो तुम्हारी मर्जी कहां चलती है? सिर्फ मंदिर में नहीं जाते, यही तुम्हारी मर्जी चलती है क्या? अच्छे काम नहीं करने के लिए मर्जी चलती है बस? आप रोक के बताओ ना, कोई चीज तुम्हारे हाथ में है क्या? उदाहरण देते हैं, कभी एक संत महात्मा मस्त अलमस्त, हिंदी सबको आती है भाई, नतिया जी दांगे हिंदी सबके अच्छी थी, सबको आती। इसमें देखने वाले सिंधी सिंधी घना है भाई, इसमें सिंधी कम होंगे ना। ये सबका मायका है, और हम अपने मन से कुछ करना चाहते हैं, अपने मन से करने। इसलिए एक भगवत गीता में एक अध्याय, उसका नाम है देव असुर संपद योग। दैवी मतलब देवता जैसे इंसान, और असुर का मतलब जिसका असुरी स्वभाव है। असुरी स्वभाव किसको बोलते हैं? जो वो भले आदमी की बात माने, भगवान के रास्ते पे चले, सुर में सुर मिलाए, वो सुर, वो हुआ देवता। देवताओं को कहते हैं सुर। और जो भगवान के शिक्षा के विरुद्ध चले, उल्टा चले, उसको बोलते हैं असुर। तो असुर का मतलब वैसे राक्षसी बुद्धि वाला। तो ये पूरा अध्याय है 16। तो कहते क्या ऐसा कौन सा नापदंड है, ऐसा कौन सा पैमाना है, ऐसा कौन सी कसौटी है कि किसी को कहें कि ये देवता है और किसी को कहें कि ये असुर है? कैसे पता लगे? ये प्रश्न पूछा गया। भाई देवता कह रहे हैं, राक्षसी सुभा जो कह रहे हैं, ये किए खबर पवे, कैसे पता लगे? भाई सिंह तो नहीं है, राक्षसों को सिंह थोड़ी होते हैं, तो पता कैसे लगे? तो उसका जवाब, उसका उत्तर ये है, जो शास्त्र की मर्यादा में रहता है वो देवताई गुणों वाला, और जो शास्त्र के नियम का विरुद्ध करता है वो असुर। एक ही प्रमाण है, एक ही कसौटी है। शास्त्र के जैसे देश के कानून का पालन करे तो अच्छा नागरिक, और देश के कानून का उल्लंघन करे, नियम का, संविधान का उल्लंघन करे तो अपराधी। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र जो सबको संयम में रखे, जैसे सरकार को बोलते हैं शासन, शासन किसका है, मतलब गवर्नमेंट किसकी है, तो शासन का मतलब जो सबको नेम में रखे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक रखे, कानून को, सब लोगों को कानून पे चलाए, ऐसे शास्त्र भी हमको मर्यादा में रखने के लिए है। और शिष्य भी उसको कहते हैं गुरु का जो मर्यादा में रहे। ये शिष्य शब्द, शास्त्र शब्द, शस्त्र शब्द, शस्त्र का मतलब हथियार, और शासन, ये सब एक जगह से निकलते हैं। सबका एक ही अर्थ है कि जीवन में नेम हो। तो शास्त्र क्या है? गीता शास्त्रम इदम ये पठे प्रियत पुमान। गीता शास्त्र है, जो भाग्यशाली इसको पढ़ता है। विष्णु पदम वापनोति, भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति करता है। भव शोकादि वर्जित, दुनिया के भय से, दुख से मुक्त हो जाता है। तो शास्त्र क्या है? जो भगवान ने दिया वो शास्त्र, जो भगवान ने, जैसे गवर्नमेंट ने दिया वो कानून, तो धर्म कौन देता है? तो धर्म राज कहते हैं, धर्मात साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान ने दिया। भगवान कहते हैं मैं धर्म स्थापना करने के लिए आता हूं, तो धर्म भगवान देते हैं, धर्म आदमी नहीं बनाता। जो भगवान धर्म देते हैं वही हमारा शास्त्र है। शास्त्र और गुरु और तीसरा परमात्मा, ये तीन हमारे सुख के साधन भगवान ने बनाए। संसार हमारा मई का है, संसार माया का है। संसार में जैसे समुद्र में कभी छोलियां बंद नहीं होती, जो समुद्र होगा उसमें छोली आती रहेगी, पानी ऊपर उठता रहेगा, नीचे गिरता रहेगा, ऐसे संसार में दुख सुख की छोलियां आती रहेंगी, बंद होने वाली नहीं है। आप समझे, संसार में शांति कभी हो जाएगी ऐसा नहीं हो सकता है। ये दुनिया तो ऐसे चलेगा ही, तो ऊपर नीचे होना ही है इसको। नाम ही इसका संसार सागर है, भव सागर इसको क्यों कहा है? क्योंकि ये तो कभी ऊपर उठेगा कभी नीचे जाएगा, ये तो ऐसे होगा। इसमें जो है वो कभी ऐसे ऊपर से नीचे पटक देता है, कभी ऊपर ले जाता है, ये तो संसार का नियम है। तो इस हर पल बदलते हुए संसार में, संसार की दूसरी माना है, संसार जो भी माना, दूसरा अर्थ है जो बदलता रहे, जो एक जैसा नहीं रहे, जिसमें हलचल हमेशा होती रहे। तो इस संसार को फिर इसलिए कह दिया भव सागर। कौन सा सागर है? ये भव का सागर है। वैसे भव कहते हैं जन्म मृत्यु को, जिसमें जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है। तो मरना पड़ता है, तो दुख तो हमारे साथ हमारी जेब में पड़ा है, क्योंकि मरना है तो ये सबसे बड़ा दुख है। दुख किसको माना है शास्त्र ने? दुख किसको माना है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जहां ज्ञान किसको कहते हैं, उसमें ये शब्द लिखे हैं कि जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास जानकारी है, जिसने गुरुओं के संग में शास्त्र के जरिए, साथ शास्त्र के माध्यम से ये जान लिया है, क्या जन्म लेना दुखदाई है? माँ के गर्भ में उल्टा लटका हर हम सभी लटके थे और मल मूत्र के थैलियों के बीच में पड़े थे, अंधकार में पड़े थे। प्लास्टिक की किसी को थैली में उल्टा लटका के रख दो, चारों ओर मल मूत्र पड़ा हो, पेशाब पड़ा हो, गंध पड़ा हो, उसके बीच में पड़ा रहना कोई आसान जगह नहीं है। और जन्म लेते ही रोते रोना शुरू करते हैं। कोई हंसता आया है क्या दुनिया में? रोते हुए आए हैं, बड़ी पीड़ा होती है। और बच्चा तो कुछ कह भी नहीं सकता है, क्या तकलीफ हो रही है। बस जैसे 15 साल से आगे बढ़ता है, समझता है दुनिया ही मैं चला रहा हूं। तब तक तो बेसहारे होता है, उसके बाद समझता है मैं ही अच्छा हूं, मैं ही समझदार हूं, और भ्रम मूर्ख है। ऐसा उसका दिमाग घूम जाता है माया से, वो समझता है अब दुनिया ही मैं चलाता हूं। और दूसरा दुख क्या है? जन्म मृत्यु, मृत्यु का भय, मौत का भय तो बड़ा भयानक भय है। हर समय तलवार सर के ऊपर लटकी हुई है, ये दुख दूसरा ये है। तीसरा है जरा बुढ़ापा, जिसको आता है उसको पता लगता है कि कितना दुखदाई है बुढ़ापा, कितना दुखदाई है। जिसको आता है उससे पूछो। अस्सी नबे में जड़े तू ही दे, 80-90 आ गया ना तो अखे इंसान कुछ दिसजे कौन, तो करण घम आई थी ने बोड़ो, न कान से सुनेगा, न आंख से देखेगा, न पांव से चल सकेगा। और सब कहेंगे ये जाए कब तो जान छूटे। दुख है कि नहीं बुढ़ापा, दुख है कि नहीं? जरा व्याधि, व्याधि कहते हैं बीमारी को, भगवान किसी को न दे लेकिन बीमारी जैसा दुख और कोई दुख नहीं है। कोई महात्मा कहते थे कि आपको दुख देखना है तो अस्पताल में जाके देखा करो, एक चक्कर अस्पताल से लगा के आया करो, एक चक्कर मशान से, शमशान से, और एक चक्कर अस्पताल का लगा के रोज देख लिया करो तो देखो कि कितना दुख है दुनिया में। मशान में सब रोते हुए दिखते हैं कि अरे हमारा सज्जन चला गया, और अस्पताल में लोग सारे बेचारे दुखी बाहर बैठे हुए हैं और अंदर लटके हुए, क्या उनका हाल है। पैसा तो और खर्च होता है लेकिन पीड़ा कितनी भोगनी पड़ती। तो ये चार दुख माने हैं संसार में शास्त्र ने, और इसका इलाज किसी के पास नहीं। मृत्यु का इलाज किसी के पास है क्या? किसी के पास नहीं। बुढ़ापे को रोकने का इलाज है क्या? कहीं नहीं। ये है दुख, ये है असल में इस दुनिया का। जो इसको दुख मानता है वो समझदार है, उसको ज्ञानी कहा गया है। ज्ञानी जानता है कि ये असली दुख है, बाकी जो दुख है वो आने जाने वाले हैं, लेकिन ये दुख सदा हमारे साथ पड़ लगे हुए हैं। इनसे जो मुक्त होने के लिए सोचता है उसको समझदार बुद्धिमान माना जाता है। संत बड़े काम को जगत में आते हैं, मिटा के खौफ मरने का अमर जीवन बनाते हैं। भगवद गीता का उपदेश कब दिया गया? जब चारों ओर मौत का खेल खेला जा रहा था। भागवत कब धरती के ऊपर आई? जब परीक्षात को 7 दिन में मृत्यु का शाप दिया हुआ था, और उसके बीच में भगवान ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का साधन सिखाया। ध्रुव महाराज के लिए जब वैकुंठ आया, वैकुंठ से विमान आया बद्री का आश्रम में, तो ध्रुव महाराज गंगा में स्नान करके संतों को प्रणाम परिक्रमा करके विमान में चढ़ रहा था, तो मृत्यु ने कहा ये मृत्यु संसार है, ऐसे कैसे चढ़ोगे? तो ध्रुव ने कहा आप सर नीचे रखो, मैं आपके सर के ऊपर पांव रख के विमान में चढ़ता हूं। तो जो भगवान के कौन गुरु मिला ध्रुव महाराज को? नारद। जो गुरुजनों की शिक्षा से जिनने मौत के ऊपर उसने विजय प्राप्त, मौत के सर के ऊपर पांव रख के विमान में चढ़ा, मौत का भय कहां रह गया? मौत जे मथे ते पैर रखी आई वैकुंठ जे विमान में चढ़ी, मृत्यु फिर मृत्यु रह नहीं जाती है, मृत्यु भगवान से मिलने का बहाना है, सामने खड़े है पर्दे के पीछे। ये कोई समझा दे, कोई दिखा दे तो भय खत्म हो जाए। और बहुत से संत इच्छा मृत्यु उनकी मर्जी है तब जाएं, जब उनका मन करेगा तब जाएंगे, इतनी मौज में होते। एक वृंदावन में बहुत से ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त हैं, वो एक साधु था, भगवान का बहुत प्रेमी भक्त था, लेकिन भगवान को अपना मित्र मानता था। और ग्वाले जो गाय चराने जाते थे वो उनके बीच में बैठता था, कभी वो कहते बाबा भोजन कर लो, उसने बोला नहीं आज मेरे को मरना है, भोजन नहीं करूंगा। अरे सब कहते मरना है बाबा, ये कोई अच्छी बात है कि बोल नहीं आज मेरा मन कर रहा है अभी नहीं रहना यहाँ। भोजन खाया नहीं, थोड़ी देर के बाद ग्वाले देखेंगे वो तो मर गया, बोलो क्या क्या करना चाहिए। वो लकड़ी का उसका अर्थी बनाया, उठा के ले जा रहे हैं, तो एक घर के रास्ते से जा रहे थे शमशान में, तो किसी माता जी ने पूछ लिया अरे भाई कौन मर गया आज? बोले ये बाबा मर गया। बोले बाबा को आज ही मरना है? हमारे घर में लड़की की शादी थी, क्या बाबा को आज ही मरना था क्या? कल मर जाता, कम से कम हमारी शादी सुख से हो जाती। बाबा उठ के बैठ गया। बाबा ने कहा मैया क्या बोला, तुम्हारी लड़की की शादी है, तुम मुझसे शादी कर, मैं कल मर जाऊंगा, मुझे क्या। अरे ग्वाले तो भाग गए कि ये बाबा जीवित कैसे हो गया, मैं पता नहीं कह, उठ के बैठ गया। और उठ के बेटा बोला माँ तू शादी कर, तेरी बच्ची की मौज कर, आज कल मैं मर जाऊंगा, उसमें क्या है, मेरी मर्जी मरना है तो। और दूसरे दिन फिर जब शादी हो गई तो बोला मर गया फिर। तो मौत उनको ऐसे लगता है जैसे जैसे कोई कुछ नहीं है, तो हमारी मर्जी है जब मरना चाहे। द्रु महाराज का जब विमान जा रहा था तो द्रु महाराज ने कहा विमान वालों को रोको, मेरी मां ने भगवान से मिलने का मेरे को साधन बताया था, रास्ता बताया था, मैं अकेला नहीं चलूंगा, मेरी मां को ले चलूंगा। ये सबसे बड़ी बात है, जिसने आपको मंदिर का रास्ता दिखाया वो आपको भगवान मिल जाए तो उसको मत भूलना, इसको बोलता है साधु संघ। जिसने आपको रास्ता दिखाया और आप अगर पहले भगवान को पा रहे हो तो उसको जरूर याद करके साथ ले जाना। तो विमान चलाने वाले नंद और सुनंद ने कहा कि देखो आगे के विमान में आपकी माता जा रही है, उसका पहले बंदोबस्त किया है, व्यवस्था कर ली गई है। सो इस दुख को जानना, जानते सब है, ऐसा नहीं किसी को पता नहीं है, लेकिन बैठे कैसे हैं, जैसे चूहा आंख बंद कर दे के बिल्ली चली गई, बिल्ली चली गई, बिल्ली तो सामने खड़ी है, आंखें बंद करने से बिल्ली जा थोड़ी जाइए, हमने आंखें बंद कर रखी है। क्यों किए, किसने कराई है? बोलो माया ने। ये माया ऐसी ठगनी है, ऐसी हमारे को धोखे में रखने वाली है। जो माया का एक अर्थ होता है, जो नहीं है वो दिखा दे, जो है वो छुपा दे। भगवान है उसको तो छुपा देती है, और ये दुनिया रहने वाली नहीं है ये दिखा देती है, ये माया इसको बोलते हैं। जो असली चीज है उसको छुपा देती है, और जो नहीं है वो दिखा देती है, इसको माया बोलते हैं। और ये माया से दुख कौन दे रहा है, ये प्रश्न पूछा गया, ये सवाल पूछा गया कि हमारे जीवन के दुख का कारण क्या है। अनादिकाल जीव कृष्ण बाहर मुख, अतेव माया देता संसार दुख। भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं तो अपने आप माया की गोद में गिरते हैं, और माया थप्पड़ मारना शुरू करती है। किसी को माया नहीं पकड़ती है, हम भगवान को भूलते हैं और हम अपने दुख का साधन स्वयं पैदा करते हैं। किसी को माया ने नहीं पकड़ा है, हमने भगवान को छोड़ा है इसलिए माया की गोद में गिरे हैं, और गिरने के बाद फुटबॉल की तरह धक्के खा रहे हैं। फुटबॉल का मतलब ये लात मारे, कभी फुटबॉल को कहीं देखा है कि एक जगह खड़ा हो, इधर गया तो उसने लात मारी, उधर गया तो उसने लात मारी। हमारा हाल है इस दुनिया में ऐसा, इधर से उधर भटक रहे हैं, क्यों? भगवान को भूलने के कारण। सुख को जाओ सदा शरण राम की लो, ये सुबह से चल रहा है। कहे नानक सुन रहे मना दुर्लभ मानव दे, ये मानव देव में केवल कर सकते हैं और कभी नहीं कर सकते। ये स्वर्ग में जाके देवता बन के नहीं कर सकते। ये किसी और जूनी में भी नहीं हो सकता, केवल मानव जूनम में, सिर्फ मानव जी जन्म में और कहीं भी नहीं। और ये चिंतन नहीं किया तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक एक आदमी बहुत बड़े एक महल में बंद हो गया, अंधेरा महल है, कह रहा भाई मुझे निकलना है, मुझे बाहर निकालो, मैं अंदर फंस गया हूं। तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने, जानता नहीं था, कहा तुम्हारा हाथ दीवार पे रख देता हूं, इस महल में चौसठ लाख दरवाजे हैं, ऐसे मानो बहुत दरवाजे हैं, बाकी सब बंद हैं, एक खुला है, तुम चलते जाओ, खुला दरवाजा आएगा, निकल जाना, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। चलता है, एक दरवाजा बंद है, दूसरा बंद है, तीसरा बंद है, खुले दरवाजे के पास आया तो हाथ में खारिश होने लगी। तो हाथ में खारिश करने के लिए खुजली करने लगा, पांव तो चल गया और वापस दीवार पे हाथ रखा तो दरवाजा बंद आ गया, वो खुला निकल गया, फिर तो फिर चक्कर लगाने लगा। ऐसे ये 84 लाख जूनिया इस दुनिया है, बड़ा ऐसा महल, बाकी सब है दरवाजे बंद, वहां से कोई निकल नहीं सकता, एक जूनी से दूसरे में जाना पड़ेगा, लेकिन मानव जन्म एक दरवाजा है तो हम बाहर चाहें तो निकल सकते। लेकिन उस वक्त हमारे को क्या होता है, हाँ खुजली होती है। कौन सी खुजली होती है? अंग्रेजी में कहते हैं एंजॉयमेंट की, कुछ मौज कर लेते हैं, और मौज की खुजली में ये मौका गुजर जाता है। हाथ रखा हुआ होता तो निकल गए होते, उस वक्त हमने वहां से हाथ हटा दिया। तो मानव जन्म इतना दुर्लभ मौका है, उसमें अगर हमने इनका कोई तोड़ नहीं निकाला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का, तो फिर और कहीं निकालने का मौका मिलेगा ही नहीं। इसलिए पहला जीवन का लक्ष्य सुख चाहिए तो भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए। मैं तीन शब्द बोले थे, टे खर्चा, एक परमात्मा, एक शास्त्र, एक गुरुजन साधु, ये तीन हमारे सुख के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। परमात्मा हृदय से कहता है, आप गलत काम करने का सोचो, अंदर से आपका आवाज आएगा ठीक नहीं है, आएगा अंदर से, सबको पता लगता है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब उस वक्त हमारा लोभ, हमारा स्वभाव कैसे बनता है, हर एक का अलग स्वभाव है, स्वभाव बनता कैसे, स्वभाव बनता है प्रकृति के गुणों से, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीन प्रकृति के गुण है, और हम सबके ऊपर इन गुणों का इतना प्रभाव है कि हमारा स्वभाव इन गुणों से बनता है। और जब मंदिर में आते हैं तो वहां तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए मंदिर में शांति मिलती है। मंदिर में कभी भी जाके बैठो, शांति मिलेगी, क्योंकि यहां तीन गुणा आपके स्वभाव के ऊपर प्रभाव नहीं डालते। यहां का वातावरण, यहां की वाइब्रेशन, यहां की ध्वनि ऐसी होती है कि यहां आपको परेशानी चिंता नहीं होती। आप दुकान में जाओ, रजोगुण ऐसा प्रबल होगा, आज कितना पैसा देना है, इतना लेना है, ये चीज यहां पड़ी है, वहां चढ़िए, उस वक्त रजोगुण दिमाग को ऐसे घुमाएगा। तब आप कहो कि शांत बैठ में कि रोटी खा पाए, वो भी आप खा नहीं सकेंगे। घर से रोटी ले जाते हो, कभी शांति से खाइए दुकान पे, नहीं खा सकते। एक खाते हैं तब दो और दिमाग में बातें आएंगी, उसका क्या हुआ, वो कहां गया, वो वहां क्यों, माहौल रजोगुण का। तो स्वभाव हमारा गुणों से बनता है। और साधु क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, भाई सतोगुण में आओ। सतो संजायते ज्ञानम, सतोगुण में ज्ञान होगा, जानकारी होगी कि सही क्या है, गलत क्या है। और सुख, सतोगुण में सुख पैदा होता है। सुख कहां होता है, बोले सात्विक व्यक्ति को। आप उदाहरण जीवन में देखना, कभी सुबह सवेले 5 बजे उठ के देखो, आपके लिए लगेगा कि आज बहुत सारे काम हो गए। आप सिर्फ सवेल उठ के एक दिन देखोगे, पहले तो शांत बाहर का प्रकृति का वातावरण देखने से अंदर में बहुत बड़ी शांति मिलती है। और उसके बाद आप 9 बजे 8:30 बजे उठो तो आपको भागा दौड़ी, जल्दी करो, जाना है तब तो। और 5 बजे उठो तो 3 घंटे इतने बड़े लगेंगे, वाह इतना सारा समय हमारे पास है, कितने काम, कोई काम कोई लगेगा क्या, कुछ भी नहीं है दुनिया में। घर में आप सवेल उठ के देखो तो सारे काम खत्म, और देर से उठा सारा दिन चिंता। तो सतोगुण की पहली पहचान है, जो बचपन में हम पढ़ते थे स्कूल में, क्या पढ़ाते थे, अभी तो स्कूल में ये नहीं पढ़ाते, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, पढ़ते थे हमारे स्कूल में, ये पढ़ते थे कभी, याद है किसी को, सवेल सोना सवेल उठना, आदमी की सेहत भी अच्छी, बुद्धि भी अच्छी, और धन भी आएगा, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी, हेल्दी का मतलब स्वस्थ अच्छा, वेल्दी का मतलब धनवान, और वाइज का मतलब बुद्धिमान। सवेल सोना सवेल उठना ये स्कूल में पढ़ाते थे, अब ये नहीं पढ़ाते हैं। स्कूल में ये भी पढ़ाते थे, अभी नहीं पढ़ाते हैं। जो पुराने हैं उनसे पूछ लो कि पढ़ाते थे, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। कहते धन गया तो कोई बात नहीं, हाथ का मेल है फिर कमा लेंगे, आनी जानी चीज है। वैसे भी अर्थ बाहर होता है, हमारे अंदर नहीं, हमारे जेब में नहीं है। आपकी जेब में पैसा पड़ा है तब भी आपका नहीं है, ये तो बाहर रहेगा, अंदर नहीं रह सकता, अर्थ बाहर है। तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया तो कुछ तकलीफ होगी। हम भी सुखी नहीं है तो घर परिवार सुखी नहीं होगा, काम भी नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ इज गॉन समथिंग इज, कुछ नुकसान, लेकिन चरित्र चला गया, करेक्टर चला गया, हमारा नाम चला गया, हमारे जो जीवन के मूल्य, जो जो जीवन की लक्षण हल्याव्या, लक्षण चले गए, लक्षण हल्याव्या, करेक्टर चला गया, सब कुछ गया, फिर तो देवाला निकल गया। लेकिन आज इसके बिल्कुल उल्टा है, सारा ही लक्षण के ऊपर तो पानी फेर दिया, जाए तो जाने दो, बीमार हो तो होने दो लेकिन पैसा आने दो, उल्टा हो गया। पहले का पैसा गया तो कुछ नहीं, अभी बोला इखलाक गया तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है। तबीयत कोई बात नहीं, दवाई लेके खा लेंगे, बाईपास करा लेंगे, लेकिन पैसा होना चाहिए। उल्टा बिल्कुल हो गया, जो पहले जिसको अच्छा मानते थे उसको हमने भुला दिया, और जो पहले जिसको पीछे कर देते, पहले कहते थे कहावत यह होती थी, उत्तम खेती वदनड व्यापार, नीच नौकरी बुना पिनण बेकार। उत्तम खेती अब कोई नहीं कर रहा है आप में से, आपके बाप दादा से पूछे जमींदार थे सारे, पूछ लेना जमींदारी थी बड़ी बड़ी। उत्तम खेती बढ़ता हुआ व्यापार, नहीं तो व्यापारी बढ़ेगा। नीच नौकरी, आज सब नौकरी करना चाहते हैं। देखो नौजवान बच्चा बाप का काम नहीं करेगा, नौकरी करेगा। नौकरी नीच है, दूसरे की नौकरी ही तो करनी है। भीख मांगना बेकार। अंग्रेज जब यहां आया था 1800 में, सर्वे किया था, भारत में एक भी भिखारी नहीं था। अंग्रेज जब यहां आया भारत में एक भी भिखारी नहीं था। क्यों नहीं था? और एक भी बेरोजगार नहीं था। जो बाप काम करता था बेचा बेटा उसके काम में, बस 5 साल से काम में लग जाता था, 15 साल तक काम सीख लेता था, किसी की नौकरी क्यों करेगा? जो बाप का काम है वही काम चलता था। अब कोई बच्चा अपने बाप का काम नहीं करना चाहता, नौकरी करने को तैयार है दूसरे की, लेकिन अपने घर का काम नहीं करेगा, अपने बाप का काम नहीं करेगा। दूसरे की नौकरी करने को तैयार है, अपने घर की काम करने को तैयार नहीं। बहुत बड़ा भारत, भारत में धन नहीं होता, भारत सुखी नहीं होता, तो बाहर से लोग यहां क्यों आए? काय के लिए अफगान आए, काय के लिए मुगल आए, काय के लिए तुर्क आए, काय के लिए अरगून आए, काय के लिए पठान आए, काय के लिए अंग्रेज आए? अगर उनके पास सुख होता तो वो यहां क्यों आए? भूखे थे, लुटेरे थे, और यहां सब शांति थी, धन था। तो आज हम क्यों कहते हैं हमारे पास धन नहीं है? अरे धन हमारा आध्यात्मिक था, धन हमारा धर्म था, जिसने हमारे संतुष्ट रखा था। उसने देखा ये कहीं जाते नहीं है, किसी की नौकरी करते नहीं है, अपने आप में कितने संतुष्ट है। तो हमारे सुख का, शांति का, संतुष्टि के जो साधन थे, शास्त्र में मर्यादाएं थी, उनको हमने भुला दिया। साधु, शास्त्र, गुरु, ये तीन हमारे को सुखी बनाने के साधन है। शास्त्र जीवन में, जीवन में शास्त्र के नियम से चलना चाहिए। गीता में श्लोक है, ये शास्त्रम विधिम उत्सर्जया यजन्ते काम कारत न सिद्धिमापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र का उल्लंघन करता है, अपनी मनमानी करता है, काम कार्थ का मतलब अपनी इच्छा से करता है, न सुखम आपनो तो उसको सुख भी नहीं मिलता है, न सुखम सुख नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलती है, सिद्धि नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती, न परम गति, और परम गति भी नहीं मिलती है। जीते जी सुख और सफलता नहीं मिलती है, और मरने के बाद परम गति नहीं मिलती है। क्यों? शास्त्र का उल्लंघन कर दिया, गवर्नमेंट के कानून को तोड़ा तो सरकार दंड देती है, भगवान के कानून को तोड़ते हैं तो यमराज दंड देती है, माया दंड, जीते जी माया दंड देती है और मरने के बाद यमराज दंड देते हैं। तो गुरुवाणी में क्या बहुत सुंदर लिखा है, जीवा गुण गोविंद गाय करण सुन हर नाम, कह नानक सुन रे मना, पड़े न जम की धाम। अब कितना सीधा रास्ता बताया, जीभा गुण गोविंद गाए, जबान से गोविंद के गुण जाओ, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण
जीभा गुण गोविंद का जीभा तो तबलक भली जबलक जपई राम नहीं तो काढ़ के फेंकिए भला नहीं मुख में चाम। ये अगर राम नहीं जपती है गोविंद के गुण नहीं गाती है तो चमड़ी का टुकड़ा काहे के लिए रखा है मुंह में, निकाल के फेंक दो। आने से पहले पवन कह रहा था पहले कम से कम रोज गांव में शहर में हम मिलते थे एक दूसरे को राम राम करते थे, इतना राम राम दिन रात में हमारा हो जाता था कि कोई अलग साधन करने की जरूरत नहीं थी। और घर में दादा दादी रामायण भागवत की रामायण ये इतनी कथाएं बच्चों को बता देते थे कि कोई अलग शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब राम राम भी हमारे मुख से निकल गया, अब उठते बैठते राम राम तक नहीं कहते। और बच्चों को दादा दादियों को तो घर से ही निकाल दिया, उसकी जगह पे टीवी को लाके रख दिया, अब टीवी बच्चों को क्या सिखाएगी। तो शिक्षा कहीं नहीं रह गई, ये मंदिर हैं शिक्षा के लिए। फिर हम दोबारा कहते हैं यही एक जगहें बची हैं, ये हमारे पूर्वजों ने कैसे भी इतना सुंदर आस्थान बनाए हैं, यहां शास्त्र का अच्छी तरह से अध्ययन होना चाहिए। सुबह गुरबाणी का जो शब्द पढ़ रहे थे हमारे भक्त, गुरु के शरण में रहने से, उस सारे शब्द का अर्थ एक शब्द में यह था, गुरु के शरण में रहने से, गुरु की आज्ञा में रहने से, गुरु की शिक्षा पालन करने से सहज गोपाल मिलता है। क्या शब्द था? सहज गोपाल मिलता है। तो यही कथा में कह रहे थे कि जीव को भगवान से मिलने सुख कब मिलेगा, जब भगवान से रिश्ता मिले जुड़ेगा, भगवान से संबंध स्थापित होगा, भगवान से जब हमारा जान पहचान होगी। वो छोटी सी बच्ची पूछ रही थी पवन की के कैसे पता लगे कि भगवान है। अच्छा अच्छा प्रश्न है, कैसे पता लगे भगवान है। महाराज से जब कोई पूछते थे प्रभुपाद जी से कैसे पता लगे भगवान कौन है, तो वो ऐसे पूछते थे तुम कैसे मानते हो कि तुम्हारा पिता है। भाई किसी ने आपको बताया तब किसी आप किसी को पिता अपना मानते हो ना, आप कैसे किसका आप कैसे कहते हो कि ये मेरा पिता है, कैसे कहते हो, कौन प्रमाण है। बोला मां प्रमाण है, मां ने बता दिया ये पिता है इसलिए मानते हैं। तो भगवान कौन है ये शास्त्र ने बता दिया, शास्त्र मां है। गीता को तो गीता महात्म में लिखा है अष्टादश अध्यायनी अंब 18 अध्याय वाली माता, ये गीता माता माता की संज्ञा दी गई है। मॉरिशस में पूछा था एक बार पत्रकारों ने, नहीं टेलीविजन वालों ने, कि इतनी सारी 5000 साल से पहले भगवान के कृष्ण ने अगर गीता दी उसकी आधुनिक युग में क्या जरूरत है, आजकल लोगों को क्या जरूरत है। तो हमने उनसे पूछा भला आज मां की जरूरत है कि नहीं दुनिया में। बोला ये क्यों पूछ रहे हैं। मैंने बोला बताओ किसी का जन्म बगैर मां के हो सकता है क्या। बोला कोई बोलना बगैर मां के सीख सकता है क्या। जो बोलता है उसको मां की जबान बोलते हैं, मदर टंग है, मादरी जबान है, हाँ मातृभाषा है। जन्म कौन देती है? मां। बोलना कौन सिखाती है? मां। चलना कौन सिखाती है? मां। तो बगैर मां के कोई दुनिया में आ सकता है, बोल सकता है, चल सकता है? बोला नहीं। तो मैंने बोला ऐसे हमारे ऋषियों ने कहा गीता माता है, उसके बगैर न तुम्हारा जन्म होगा आध्यात्मिक, न तुम्हारे को आध्यात्मिक बोलना आएगा और न ही आध्यात्मिक रास्ते में चलना आएगा। ये माता है, इसको शास्त्र ने माता कहा है। और जितना सुख मां की गोद में है और बाप की उंगली पकड़ने में है बचपन में, उतना सुख हमारे को और कभी कभी मिला नहीं है। आप अपने जीवन में देख लो, जो सुख मां की गोद में मिला और पिता की उंगली पकड़ के जितने दिन चले, वो जो सुख है वो हमने अपनी मेहनत से कमाया, भले महल बनाए, गाड़ियां बनाए, लेकिन उसमें सुख नहीं है। माता की गोद में और पिता के उंगली पकड़ने में सुख है। असल में इस सुख के लिए सब सीखते रहते हैं, उसके लिए सब वो ढूंढ रहे हैं। तो मां की गोद, गांधी के शब्दों में महात्मा कहते थे कि इस संसार के समस्याओं में मैं जब घिर जाता हूं, मुझे कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखता है, दुख चारों ओर से घेर लेता है, तो मैं गीता माता की गोद में सर रख देता हूं। इस मां ने आज तक कभी मेरे को निराश नहीं किया है, हमेशा नया प्रकाश दिया है, हमेशा नई रोशनी दी है, हमेशा नया रास्ता दिया है। आज तक मैं कभी यहां से निराश नहीं हुआ। और पिता की उंगली, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना, पिता की उंगली पकड़ना है। शास्त्र के माध्यम से चलेंगे तो पिता की उंगली पकड़ना। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर अविनाश, फिर डोलनते ये दूसरा, एक और भी दंडवत बनवा अनेक बार सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखे नानक देकर हत। और गुरु नानक से कहते हैं भगवान को दंडवत वंदना अनेक बार करो। ये गुरु के स्थान के ऊपर खड़े होके कह रहे हैं, दंडवत वंदना अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार। दंडवत का मतलब क्या है? डंडे की तरह गिरना। दंडवत शब्द का अर्थ है जैसे डंडा है ना, ये डंडा ऐसे सुला देते हैं ना, ऐसे भगवान के सामने अपने आप को समर्पण करना। एक होता है नमस्कार, हाथ जोड़ने का। वैसे नमस्कार शब्द का अर्थ है नमस्ते, मेरा अस्ते, कुछ मेरा नहीं है। संस्कृत में इसका अर्थ है कुछ मेरा नहीं है भगवान, सब कुछ आपका है। और ऐसे हाथ जोड़ने से किसी के सामने इसका अर्थ होता है आप आज्ञा कीजिए, मैं कैसे सेवा करूं। ये एक पहला नमस्कार है आज्ञा पालन का। दूसरा नमस्कार जब करते हैं तो हाथ जोड़ने के साथ सर भी झुकाते हैं, इसका अर्थ होता है कि हम अपने अकुल से नहीं करेंगे, आप जैसे बताएंगे वैसे करेंगे पहले तो। और तीसरा होता है दंडवत प्रणाम। पुरुषों को, आदमी को पूरा प्रणाम करना पड़ता है सारे का सारे लेट के, इसको कहते हैं छह अंग प्रणाम, दो पांव, दो हाथ, एक छाती और एक माथा, ये छह अंग, इसको कहते हैं षष्टांग प्रणाम। षष्टांग मतलब छह अंग का प्रणाम, इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। माता जी को पांच अंग प्रणाम है, पांच अंग। छाती माता जी की धरती पे नहीं लगनी चाहिए, धरती पृथ्वी माता जी के वक्ष स्थल छाती को नहीं सहन कर सकती है, इसलिए माता जी का प्रणाम पांच अंग, दो हाथ, दो पांव और सर, उससे प्रणाम करना। दंडवत वंदना, वंदना का मतलब है प्रार्थना, ये अरदास जो है ये वंदना है। वंदन भक्ति का एक अंग है, वंदना का मतलब प्रार्थना करना, अरदास करना वंदना है। दंडवंत वंदना, इसका मतलब पहले प्रणाम करो, फिर अरदास करो, फिर प्रणाम करो। अनेक बार का मतलब यह है पहले आके प्रणाम करो, फिर अरदास करो, वंदना करो, फिर प्रणाम करो। सर्व कला समर्थ भगवान के लिए शब्द है जी, ये शब्द है भगवान के लिए, भगवान सर्व कला समर्थ है। सर्व कला, कला का मतलब होता है असल में भगवान की कला को बोलते हैं। भगवान के जो अवतार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कला और अंश। कला का मतलब भगवान अपने से अपने जैसा दूसरा बना के अवतार के लिए भेजता है जो कोई खास काम करता है, और अंश होता है जो भगवान भेजता है काम भी करता है और कोई शिक्षा भी देता है। और जब कोई अवतार काम भी करे शिक्षा भी दे तो उसको कहते हैं सर्व कला समर्थ। तो उसके अंदर सारी कलाएं समर्थ है। जैसे भगवान रामचंद्र है तो अवतार लिया तो काम भी किया, रावण को मारा, सेतु भी बांधा, कितने लोगों का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण का अवतार है तो कंस मारना, धरती का भार उतारना, गीता का उपदेश देना। तो इसको कहते हैं सर्व कला समर्थ, जो सारी कलाओं से समर्थ है। दंडवत वंदना अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलनते राखे। डोलन का मतलब संसार में हम डगमगा जाएंगे, हमारे पांव हिल जाएंगे। डोलन का मतलब है अपने मार्ग से हिल जाना। भाई कोई आई बहुत समुद्र की वीर आई, तूफान की तरह छोली आई और हमको ऊपर उठा के फेंक दिया तो हम डुल जाएंगे। तो देकर हाथ, तो भगवान हाथ देके पकड़ लेगा भगवान। इसलिए ये दो बातें कह रहे हैं, दंडवत और वंदना दोनों करो। भागवत जहां पूरी होती है वहां दो बातें लिखी है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब मिलके भगवान का कीर्तन करेंगे तो पाप सारे नाश हो जाएंगे। बोला पाप तो नाश हो जाएंगे, पाप के कारण जो दुख आएगा वो, बोला प्रणामो हरिम दुख शमनम। भगवान को दंडवत करके प्रणाम करेंगे तो दुख चले जाएंगे। अब ये सब एक ही बात है शास्त्रों में, शास्त्रों में कोई अंतर नहीं है। ग्रंथ साहब में गुरुजनों ने भगवान के गुण गाए हैं और गीता में भगवान ने अपने भक्तों के गुण गाए और अपने को मिलने का रास्ता बताया, और इसमें गुरुजनों ने भगवान के गुण गा के भगवान को मिलने का रास्ता बताया। तो दोनों में बात एक ही है, समझने में थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो भगवान हमको डोलन से हाथ से पकड़ के रख लेंगे। एक श्लोक भगवद गीता के 12वें अध्याय में आता है, मृत्यु संसार सागरात भवामि निचरात पारत मई आवेशित चेतसाम समुद्रता समुद्रता। ये मृत्यु संसार सागर में कोई डूब रहा है, डोल रहा है। डोल रहा है का मतलब असल में इधर उधर भटक रहा है। असल डोल शब्द कहां से आता है, कुएं के अंदर जो वो पहले डोल पानी के लिए डालते थे ना, उसको इधर उधर ऐसे लटकाना पड़ता था तब भरती थी। तो डोल शब्द का मतलब डोलना। और दूसरा डोल कहते हैं बंगाली में झूले को, जब ना झूला झूलन में बिठा के भगवान को झुलाते हैं, इसको डोल कहते हैं, डोल यात्रा। डोल का मतलब हिलना, झुलना, मतलब एक जगह पे नहीं रहना, इधर से उधर चला जाए। तो उस वक्त जब तुम समुन्दर के अंदर डूबते हुए गोते खाते हो, उस वक्त मैं तुम्हारे को पकड़ के निकाल लेता हूं ऊपर ऊपर से, तेरे को भीगने भी नहीं देता हूं, गिरने भी नहीं देता हूं। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को जो रोज प्रणाम करता है और रोज भगवान की प्रार्थना करता है, उसको कभी गिरने नहीं देंगे, कभी भटकने नहीं देंगे। नमे भक्त प्रणश्यति, उसका विनाश नहीं होने देंगे भगवान। गलती हो भी जाएगी ना तो भगवान उसको सुधार लेंगे। अंतर क्या है, एक कथा करके समय हो रहा है समाप्त करते हैं कथा को। गुरु के निर्देश में भगवान की भक्ति करेंगे तो भी हमसे स्वभाव के कारण कोई गलती हो गई तो यम के धाम नहीं भेजा जाएगा, पड़े न यम के धाम। कहां जाना पड़ेगा, भगवान अपने हाथ से ही दंडित कर देंगे, अपने हाथ में रखेंगे। जैसे उदाहरण दें, मिसाल देते हैं, आपके घर में कोई चोर आके कुछ उठा के जाए तो आप पुलिस को फोन करके उसको पुलिस के हवाले करेंगे। लेकिन आपका बेटा ही आपके जेब से 5,000 रुपया ले जाए तो पुलिस को तो फोन नहीं करेंगे ना, फिर क्या करेंगे उस बच्चे को? आप खुद ही थप्पड़ मारेंगे, डांटेंगे, लेकिन पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। ऐसे जो गुरुजनों के शरण में भगवान के चरणों में दंडवत वंदना करते हैं, उनको भगवान पकड़ के भले कान पकड़ ले, लेकिन यम के पास नहीं भेजेगा, पुलिस के हवाले नहीं करेगा। यमराज है भगवान की पुलिस, ये माया है, उसके पास नहीं भेजेगा, स्वयं दंडित करेगा, ऐसा नहीं नहीं करेगा, स्वयं दंड देगा, लेकिन वहां नहीं भेजेगा, क्योंकि उसने भगवान का पांव पकड़ लिया है, भगवान से अपना रिश्ता जोड़ लिया है। तो कैसे भी करे, कौन बहुत अच्छा, एक सिंध का सूफी संत रोहिणी कथा, डॉक्टर रोचन दास, वो सूफी गाते थे, सांसों को संगीत बना ले, गोविंद को मीत बना ले, भगवान को अपना मित्र बना ले, सांसों को संगीत बना ले। और गुरबाणी में इसके लिए क्या शब्द है? सिमर सिमर नहीं है, गोविंद मन अंदर की उतरे चिंद, क्या शब्द है? श्वास श्वास सिमर गोविंद मन अंदर की उतरे चिंद। मन के अंदर की चिंता ना खत्म हो जाएगी। उतरे का मतलब है मंत्र के अंदर होता है उतर जाना। तो जैसे भी सुमरण करोगे गोविंद का, श्वास श्वास का मतलब क्या है? जितने श्वास दिन में लेते हो उतने बार भगवान का नाम लिया करो, एक श्वास बेकार नहीं जाना चाहिए। 24,000 श्वास दिन रात में लेते हैं, इसलिए चाहे तो एक समय बैठ के 24,000 नाम का जप लिया कर को 2 घंटे में हो जाता, और नहीं तो सारा दिन भगवान का नाम लेने का नेम बना लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 हरे।